जी अब सबको चला गया मैसेज। तो 569 पेज के ऊपर इसका तर्जुमा है, और अगले एक पेज के यानी अगले दो पेज के बाद थोड़ा सा तफसीर है इन्हीं आयात की, और उसके बाद मारफ़ मसाइल शुरू होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबके पास किताब होगी और आप इसको खोली भी होंगी। तो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. كوارڈینیٹر صاحبہ آپ پلیز میوٹ کر لیجیے اپنے مائک کو، آپ کے آوازیں آ رہی ہیں. اچھا، تو سورہ جن کی جو آخری چند آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے، جیسا کہ حضرت نے خود آلریڈی کیا ہوا اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پیچھے کی جو آیات تھیں اس کا تھوڑا سا ظاہر بیک گراؤنڈ سے ہی پھر بات آگے چلانی چاہیے تاکہ کچھ ریفرنس ٹو کانٹیکس بن سکے. تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا نا کہ وہی جو جنوں کا آسمانوں میں جا کر کے خبریں سننا بند کر دیا گیا تھا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ، اور پھر اس بات سے وہ بہت پریشان ہوئے تھے کہ بھئی ہمارا تو سارا کام ٹھپ ہو جائے گا. کاہنوں کے ساتھ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، غیب کی خبریں چرا چرا کے لاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے، پھر وہ انسانوں کو جھوٹ ملا ملا کر کے بتاتے تھے اور پھر ان سے وہ اپنے کاروبار چلاتے تھے، تو یہ سب بند ہو جائے گا. تو انہوں نے اس فکر کے اندر پھر باقاعدہ میٹنگ بلائی سارے جنوں کی، اور پھر اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ دنیا میں پھیل جاؤ. ٹولیاں بنا بنا کے دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ٹوہ لیتے ہیں اس بات کی کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا پہرہ بٹھا دیا ہے آسمانوں میں. تو ان میں سے ایک ٹولی جو ہے وہ حجاز کے علاقے میں پہنچی، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، اور فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری تلاوت کر رہے تھے، زور سے تلاوت کی جاتی ہے فجر کی جماعت میں. تو ان لوگوں نے پھر اس تلاوت کو سنا، تو یہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ ایک عجیب قرت کی جانے والی چیز ہے. قرآن عجبا، قرآن قرت کی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں جس کی قرت کی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا زبردست فنومنا ہے. یہ چند آیات انہوں نے جو سنی نا، وہ اس کی عظمت کو پہچان گئے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے نظام کو تبدیل کر دیا ہے. کیا عظیم ہے وہ قرآن جو کہ ہمارے گھروں کے اندر پورا کا پورا موجود ہوتا ہے. ان لوگوں نے تو چند آیات سنی تھی اور یہ سمجھ گئے تھے کہ کتنی عظیم چیز ہے یہ قرآن. تو ہمیں بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس قرآن کی شکل میں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں زیادہ اہمیت دینی چاہیے اس سے جتنی کہ ہم اس کو ابھی دے رہے ہیں. تو پھر انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کری کہ ہم نے اپنے شرک سے توبہ کر لی، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، اور ہم پہلے یہ کیا کرتے تھے اور غلطیاں ہم کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں بتائیں سورہ جن نازل فرما کے. تو یہ ساری جو جنوں کی آپس کی باتیں تھیں یہ 15 آیتوں کے اندر کور ہو گئیں. پھر اس کے بعد 16 آیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کے بارے میں اور باتیں فرمائیں کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے، یہ لوگ سے مراد کفار مکہ، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو دنیاوی نعمتیں بھی دیتے پانی کی شکل میں، اور دنیاوی نعمتیں क्योंकि इनके यहाँ कहत पड़ता था, इनके यहाँ पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता था, तो हम इनको दुनियावी नेमतें इनके ऊपर खोल देते, लिनफ्तिनहुम फी, लेकिन वो भी हम क्यों देते, ताकि हम उनकी आजमाइश करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो नेमतें मिलती हैं वो बहुत छोटी नेमतें होती हैं, वो भी आजमाइश ही की नीयत से अल्लाह ताला देते हैं। असल नेमतें तो आखिरत की होंगी, जिसमें कोई आजमाइश नहीं होगी, वो असल नेमतें होंगी, ओरिजिनल नेमतें। इस दुनिया के अंदर तो नेमतों की शक्लें होती हैं और बहुत ही मुख्तसर और छोटी होती हैं, और वो भी टेस्ट करने के लिए दी जाती हैं कि बंदा शुक्र करता है कि नहीं करता। तो लेनफ देना हम फी था कि हम इनको आजमाएं इस नेमत को दे करके, और फिर फरमाया कि जो मेरे जिक्र से एराज करता है तो उसके ऊपर एक चढ़ने वाला यानी इंक्रीजिंग क्या कहते हैं उसको, एसेंडिंग शक्ल में एसेंड करता हुआ अजाब होता है, बढ़ता हुआ अजाब होता है। और ये के यानी और वही क्या नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हुई, ये के अल मसाजिद लिल्लाही, ये आयत नंबर 18 है, कि जो सजदे की जगहें हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं। क्या मतलब कि सजदा अल्लाह के लिए है खाली, किसी और को आप सजदा नहीं कर सकते। और फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, और अल्लाह के सिवा किसी को दुआया अंदाज में नहीं पुकार सकते, दुआ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकते। और इसके तहत हमने आपको दुआ समझाई थी कि दुआ क्या होती है, ठीक है? उम्मीद है आपको याद होगा, अगर मैं आपसे पूछने बैठ जाऊंगा तो फिर थोड़ा सा जो टाइम है वो भी खत्म हो जाएगा, सही है? तो दुआ सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं, फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी दूसरे से दुआ नहीं मांग सकते, अल्लाह ताला के साथ शामिल करके, ठीक है? वो अन्नहु, और ये कि जब अल्लाह ताला का बंदा खड़ा होता है अल्लाह ताला को पुकारते हुए, तो ये सारे के सारे जो है ना वो जमा हो जाते हैं, कादू यकूनून अलैहि लिबदा, ये उसके ऊपर एक जमघट्टा बना करके और एक यानी जिस तरह कहते हैं ना हुजूम बना करके ये लोग उसके गिर्द खड़े हो जाते हैं, ताकि उसको उसका मजाक उड़ाएं, उसको तंग करें। तो अल्लाह का बंदा यहाँ पे कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में जाकर के अकेले नमाज पढ़ा करते थे ना, तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिर्द बुरी नियतों से इकट्ठे हो जाया करते थे। जमात की नमाज तो बाद में शुरू हुई थी ना, जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान हो गए थे, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हरम में जाकर नमाज पढ़ते थे। कुल, 20वीं आयत में कहा था कि आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैं बुलाता हूं अपने रब को और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, और उनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारे लिए ना किसी नुकसान का मालिक हूं और ना तुम्हें हिदायत देने का मालिक हूं, यानी मेरे हाथ में ना तुम्हें नुकसान पहुंचाना है ना तुम्हें फायदा पहुंचाना है। और असल फायदा जब पहुंचाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं हुआ, तो फिर कोई भी फायदा हकीकतन यानी आप फायदा पहुंचाने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक सबब है, ठीक है? असल में नुकसान और फायदा पहुंचाने वाला अल्लाह ताला होता है, ठीक है? तो जब रसूल असल में फायदा और नुकसान पहुंचाने वाला, असल में का मतलब ये है कि ऑन हिज ओन, अपनी मर्जी से किसी को नुकसान पहुंचाना, अपनी मर्जी से किसी को फायदा पहुंचाना, इसको कहते हैं असल में फायदा पहुंचाना नुकसान पहुंचाना, ठीक है? ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है? जब रसूल अल्लाह ताला के नहीं कर सकते तो कोई आम बंदा कैसे कर सकता है, राइट? कोई गुनहगार बंदा, कोई काफिर मुशरिक, वो कैसे कर सकता है कि अपनी मर्जी से किसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, राइट? कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ये काम कर सकते हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला इस्तेमाल फरमाते हैं अपने बंदों को सबब के तौर पर, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है? तो रसूलों को इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेट फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है ना? जो सबसे बड़ा फायदा है यानी हिदायत वाला फायदा, उसके लिए अल्लाह ताला किसको इस्तेमाल करते हैं? रसूलों को, ठीक है? और सबसे बड़ा नुकसान भाई किसी को पहुंचाना होता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला किसको इस्तेमाल करते हैं? शैतान को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो शैतान भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, सही है? ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि शैतान भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जब शैतान अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, तो कोई दुनिया का मूजी अपनी मर्जी से कैसे काम कर सकता है? कुछ लोग होते हैं ना जिनको लोग मूजी कहा करते हैं, ठीक है? अजियत पहुंचाने वाला, ایزا پہنچانے والا, اس کو موذی کہتے ہیں. تو کوئی موذی انسان جو ہے وہ کیسے کسی انسان کو اپنی مرضی سے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز 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 نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, صرف اللہ تعالیٰ پہنچانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کیوں استعمال کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, کہ فائدہ پہنچانے کے لیے کسی کو کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیوں استعمال کرتے ہیں, نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیوں استعمال کرتے ہیں, وہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے. بہرحال تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ باتیں کہی نا کہ میں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں. اور اگلی آیت کے اندر قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے نا تو مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور میں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. ملتحدا کا مطلب کیا تھا؟ چھپنے کی جگہ. لحد آپ لوگوں کو سمجھایا تھا نا کہ قبر کے اندر جو لحد ہوتی ہے اس کے اندر میت کو چھپا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اندر نیچے ایک چھوٹا سا وہ کیا محراب, آپ میں سے کسی نے کہا تھا محراب بنا دی جاتی ہے, اس کے اندر میت کو چھپا دیتے ہیں. تو لحد کہتے ہیں چھپنا, ٹھیک ہے, یا چھپنے کی جگہ. ملتحدہ بھی چھپنے کی جگہ کو کہتے ہیں. تو میں اگر کوئی غلط کام کروں اور پھر میں چاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کے کہیں چھپ جاؤں تو مجھے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں تو ہم کہاں اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتے ہیں؟ تو اچھا ایک بات آپ اگر بتا دیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا, ان دو آیتوں کے بارے میں اس عاجز نے آپ لوگوں کو ایک بات کہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دو آیتوں میں کیا کر رہے ہیں, وہ کسی کو یاد ہے؟ ان دو آیتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں یا کیا پروف کر رہے ہیں, اگر ایک لفظ میں اس کو کہا جائے یا چھوٹے سے جملے میں اگر اس کو ڈسکرائب کیا جائے تو کیا کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دو جملوں کے اندر؟ کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو, یاد ہے کسی کو؟ لکھتے وکھتے نہیں ہیں بالکل بھی, تھوڑا ایک دو ٹرمز لکھ لیا کریں خالی تو بعد میں کام آئیں گی. کلو کلو تو پوری آیت کے اندر موجود ہے, اور کلو اگر دینا ہوتا تو پھر فائدہ ہی کیا اس لیے کہ پہلے جو بتایا تھا وہی کلوز ہے نا, تو وہ لکھ لیا کریں نا ایک دو ٹرمز. کتاب کے اوپر لکھنا علم کی نیت سے یہ کتاب کی بے ادبی نہیں ہوتی ہے. تو جو لوگ اگر جن کے پاس فزیکل بک نہیں ہے نا تو ان کو چاہیے کہ پرنٹ نکال لیں, ٹھیک ہے نا, اپنے بچوں کو یا اپنے ہسبینڈس کو بولیں کہ بھائی یہ معرف القرآن کی جو پی ڈی ایف فائل ہے آپ اس پی ڈی ایف فائل کے اس پیج سے اس پیج تک پرنٹ کر کے مجھے لا دیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے پاس پرنٹڈ پیجز ہوں گے, ان کے اوپر آپ نوٹس بنا سکیں گی. ہم ایک سورت جو ہے وہ ماشاءاللہ مہینوں چلاتے ہیں نا, تو اگر آپ ایک سورت کے 10-12 پیجز ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ پرنٹ کر لیں گی تو آپ کے لیے 2-3 مہینے کے لیے تو کافی ہو جائے گا, جب تک وہ سورت ہماری چلتی رہے گی چلتی رہے گی. اور پھر جب وہ ختم ہوگی تو پھر اگلی سورت شروع کریں گے تو پھر اس کو پرنٹ کروا لیں, ٹھیک ہے, تاکہ نوٹس آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے. جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میرے اختیار میں تمہیں نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے تمہیں فائدہ پہنچانا بھی نہیں ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اور میں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا. تو کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کسی کو بالکل یاد نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں لکھا ہے, تو بڑے افسوس کی بات ہے. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چھوٹی موٹی چیز تھے؟ کوئی معمولی چیز تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات ہیں نا, یعنی انسانوں میں بھی سب سے زیادہ اشرف. ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के हबीब हैं, ठीक है। हबीब होना अल्लाह ताला का कोई छोटी बात है, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे मशाइख क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वो नेमत हैं जो अल्लाह के खजाने में भी सिर्फ एक ही है, ठीक है। यानी बाकी नेमतों के तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के खजानों में नेमतों की कोई कमी नहीं है और हर चीज जो है वो अनगिनत मौजूद है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तो एक ही है ना, राइट। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कोई वो कॉपीज तो मौजूद नहीं है ना, राइट। कोई आपके क्लोन्स मौजूद तो नहीं है आपसे, आप अल्लाह ताला के खजाने में तो एक ही है। यानी इतनी बड़ी चीज है नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। लेकिन इन आयात में नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला क्या करवा रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला इन आयात में अपनी नफी करवा रहे हैं कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, अल्लाह के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इसको कहते हैं अपनी नफी करना, लिख लें, अपनी नफी करना, अपने आप को मिटा देना, अपने आप को मिटा देना, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अपने आप को अनाइहिलेट करना, मैं लिख देता हूं अंग्रेजी में तो। अनाइहिलेट वन सेल्फ, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल फिना कर देना, इसी को फिना करना भी कहते हैं, ठीक है। फिना करना, खुद को मिटा देना, ठीक है। आप तो लिख लेंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों को बताया था कि अल्लाह ताला के सामने ना अपने आप को फिना करना पड़ता है। जब तक अपने आप को फिना नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक बंदा अल्लाह ताला की हिफाजत में नहीं आता, ठीक है। कौन सी वाली हिफाजत में नहीं आता? रूहानी हिफाजत में नहीं आता, ठीक है। शैतान से जो हिफाजत है ना, ये मामूली चीज नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। शैतान हमारे आमाल को कभी भी खत्म कर सकता है, खत्म यानी हमें यानी खत्म करवा सकता है, जितने भी आपने आमाल किए हुए हों, ठीक है। एक लम्हे में शैतान अपनी किसी ट्रिक के जरिए से हमारे सारे आमाल को जाया करवा सकता है, कुफ्रिया कलमा कहलवा देगा, कोई और गुस्ताखी की बात करवा देगा, ठीक है। तकब्बुर के जरिए से, रिया के जरिए से, कोई भी तरीका इस्तेमाल करके शैतान हमारे आमाल को जाया करवा सकता है, ठीक है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो फिर हम शैतान से अपने आमाल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, अपने आप को शैतान से महफूज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इंसान को अपने आप को फिना करना पड़ता है, ठीक है। जब इंसान अपने आप को फिना कर देता है ना, तब अल्लाह ताला की हिफाजत में वो आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि फिना करने वाला जो बंदा होता है वो अल्लाह ताला का खास बंदा बन जाता है, मखसूस बंदा बन जाता है, ठीक है। इन बंदों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। शैतान को खिताब करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे जो खास बंदे होंगे ना, इन्ना इबादी, मेरे बंदे, माय स्पेशल सर्वेंट्स, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, उनके ऊपर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, ठीक है। तो उनके अमाल को शैतान जाया नहीं करवा सकेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की खुसूसी हिफाजत में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये खुसूसी हिफाजत मिलेगी कैसे? अपने आप को फिना करने से मिलती है, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को मिटा देने से ये खुसूसी हिफाजत मिलती है। कोई सवाल किसी को? ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है? क्लियर तो कर लेना चाहिए ना इस कॉन्सेप्ट को, ताकि अपने सामने एक टारगेट तो हो ना। ठीक है, टारगेट समझ में आ जाए कि भाई मुझे कहाँ पहुंचना है, तो फिर कभी ना कभी इंसान पहुंच ही जाए वहां पर, या कोशिश शुरू तो कर देना कम से कम। ठीक है, तो अगर टारगेट ही नहीं पता है कि जाना किधर है, पहुंचना किधर है, तो फिर आपका सफर शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं मंजिल कहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए ना अपने आप को यानी कम से कम टारगेट को पता होना चाहिए। फिना कैसे करें? फिना करने के लिए जो अल्लाह ताला ने तरीके बताए हैं, सुन्नत वाले जो तरीके होते हैं, उसकी तफसील की तो ये वाली क्लास है नहीं। सही है, तो ये वाली क्लास समझ लें कि सिर्फ टारगेट सेट करने के लिए, क्योंकि इसकी तफसीलात जो हैं वो फिर उसके अंदर पूरी की पूरी सुन्नत आ जाती है। ठीक है, उसवाए हसना आ जाता है उसके अंदर, तो उसवाए हसना की डिटेल्स अगर हम अभी शुरू कर देंगे तो फिर यानी फिर मौजू से भी हट जाएंगे ना। तो इस वक्त जो है वो सिर्फ टारगेट समझ में आ जाना चाहिए कि भाई टारगेट हमारा क्या है, अपने आप को फिना करना। ठीक है, तो इस टारगेट को समझने में अगर मसला हो तो फिर पूछ लें इंशाल्लाह। बहरहाल उसके लिए दूसरी क्लासेस हैं जिसके अंदर हम ये बात कर भी चुके हैं और करते रहते हैं। अच्छा चले आगे चलें। इल्ला बलागा मिनल्लाहि व रिसालाती, तो मेरा मकसद यहाँ पर आने का क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मैसेजेस मुझे दिए जाते हैं वो पहुंचा देना। वो मैं यअसल्लाह व रसूलहू, और जिसने अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मुखालफत करी, फइन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, बस उसके उसके लिए जहन्नम की आग है जिसके अंदर वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। हत्ता, अब 23वीं आयत, 24वीं आयत, हत्ता यहाँ तक के, इजा रअउ मा यू अदूना फसयालमून मन अदअफु नासिरा व अकल्लु अददा, हत्ता के वो लोग देख लेंगे, हत्ता के जब वो लोग देख लेंगे जो उनसे वादा किया गया था। ठीक है, यानी ये लोग जो काफिर हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानी, तो वो जहन्नुम में चले जाएंगे, और जहन्नुम में जाकर के वो क्या करेंगे, वो देख लेंगे वो जो उनसे वादा किया गया था। ठीक है, कि तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा और तुम्हारे साथ ये वाला अजाब होगा, वो वाला अजाब होगा, ये सारी चीजें वो जा करके देख लेंगे। रऊ का मतलब होता है वो देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, फसा या अलमूना, पस अन करीब वो लोग जान लेंगे। ठीक है, यानी उनको पता लग जाएगा, हम कहते हैं ना उर्दू में लग पता जाएगा, तो अन करीब उन लोगों को लग पता जाएगा। मन अदअफु नासिरों व अकल्लु अददा, के इन लोगों में यानी नबी अलैहि सलाम, ईमान वाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, और ये काफिर, ये दो ग्रुप्स थे ना, ये दो ग्रोह थे मक्का मुकरमा के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप्स में से कौन सा वाला ग्रुप जो है उसके मददगार ज्यादा मजबूत हैं, और किसके मददगार कमजोर हैं, किसके हेल्पर्स पावरफुल हैं, किसके हेल्पर्स कमजोर हैं, किसके हेल्पर्स ज्यादा हैं, किसके हेल्पर्स कम है, ये उन लोगों को वहां जाकर के लग पता जाएगा। ये है इस आयत का उर्दू बा मुहावरा तर्जुमा। ठीक है, कि भाई नबी अलैहिस्सलाम के जो हेल्पर्स थे वो ज्यादा जयीफ थे, अदअफु का मतलब ज्यादा जयीफ, ज्यादा कमजोर। ठीक है, और अकल का मतलब तादाद में कम, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना कलील, तो अकल का मतलब तादाद में कलील। ठीक है, तो अकल्लु अददा कि भाई इन दोनों में से ना, ये जो दो ग्रुप्स थे मक्का मुकरमा में, जिन दोनों के दरमियान जो है वो एक टसल चल रही थी मुसलमानों में और काफिरों में, तो काफिर कहते थे कि हमारे तो मददगार भी बहुत हैं और हम तो तादाद में भी बहुत ज्यादा हैं, जबकि ये जो मुसलमान हैं इनके तो मददगार भी बहुत थोड़े से हैं। ठीक है, उनको कोई मदद भी नहीं करता, सारे इनके मुखालिफ हुए हैं और इनकी तादाद भी बहुत छोटी, बहुत थोड़ी सी है। ठीक है, तो क्यामत के दिन ना फिर क्या होगा, जब ये लोग जहन्नुम में जाएंगे तो ये देख लेंगे कि किसके मददगार ज्यादा है, किसके मददगार कम है। क्यों? इसलिए कि जहन्नुम में जब ये जाएंगे तो इनका कोई भी मददगार नहीं होगा। सही है, इनको कोई हेल्प करने के लिए वहां पर नहीं आएगा, एक भी इनका मददगार नहीं होगा, जबकि जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में इनके मददगार कौन होंगे, यानी इनकी खिदमतें करने वाले अनगिनत फरिश्ते होंगे, और जन्नत के अंदर खुदाम होंगे, गिलमान होंगे होंगे और हूरें होंगी, ठीक है, हूर, गिलमान और फरिश्ते, ये सारे के सारे इनकी मदद के लिए वहां मौजूद होंगे, जो भी इनको काम होगा, जो भी इनकी जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए हाजिर होंगे। तो वहां पे जाकर के सब पता लग जाएगा, ठीक है। ये आयत क्लियर है, किसी को कोई लफ्ज का तर्जुमा या कोई मफहूम का मतलब पूछना हो तो जरूर पूछ लीजिए। फिर उसके बाद 25वीं आयत में, कुल इन अदरी अकरीबुम मा तुअदूना, कह दीजिए कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। इनका तर्जुमा होता है नहीं, ठीक है, इन नाफिया भी कहते हैं इसको, यानी नहीं। अदरी मुझे मालूम, मुझे मालूम, ठीक है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना इदराक होना, किसी चीज का मालूम होना, पता होना, उसको कहते हैं इदराक होना। तो अदरी का मतलब भी यही है कि मुझे नहीं, यानी मुझे मालूम है। तो इन अदरी मुझे नहीं मालूम है। आ ये जो एक अलिफ के ऊपर जबर लगा हुआ है ना, ये एक्चुअली हमजा है, होता है हमजा के ऊपर जबर जबर लगा हुआ है। अलिफ के ऊपर जेर जबर पेश हो ही नहीं सकते, ठीक है। अलिफ जो है ना, ये एक खास हर्फ होता है जिसके ऊपर ना जेर लग सकता है, ना जबर लग सकता है, ना पेश लग सकता है, ठीक है। अलिफ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुकून होता है, जिसको हम उर्दू में जज़्म भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब भी आप देखें ना कि एक अलिफ बना हुआ है और उसके ऊपर या तो जबर लगा हुआ है या उसके नीचे जेर लगा हुआ है या पेश लगा हुआ है, तो समझ जाएं कि ये असल में अलिफ नहीं है बल्कि ये हमजा है, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस भी हमजा की तरह करते हैं, अ, ठीक है, हमजा की प्रोनाउंसिएशन अ से होती है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब ये अ खाली लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है क्या, क्वेश्चन, ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं इसके जरिए से। तो अ करीबन का मतलब है कि क्या करीब है। मा तू अदूना, जो उनसे वादा किया गया है या तो जो तुमसे वादा किया गया है, ठीक है। कौन सी चीज वादा की गई है, आखिरत का अजाब, ठीक है। इन काफिरों से किस चीज का वादा किया गया था कि तुम्हें आखिरत में अजाब मिलेगा, तो यहां पर कह रहे हैं अकरीब मा तू अदूना, क्या वो जिसका तुमसे वादा किया गया है यानी आखिरत, वो करीब है। अम या, अम का तर्जुमा या, यजअलु लहू रब्बी अमदा, या उस आखिरत को तुम्हारे रब ने एक मुद्दत के बाद बनाया है या एक मुद्दत के बाद रखा है, ठीक है, यानी अभी करीब नहीं है वो आखिरत बल्कि बहुत लंबी मुद्दत के बाद वो आएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, कुल, कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि मुझे नहीं मालूम कि कयामत करीब है या कयामत बाद में आएगी, देर से आएगी, ठीक है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला, इस आयत में नबी अलैहिस्सलाम से क्या करवाया जा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम के इल्म की नफी करवाई जा रही है, ठीक है। अल्लाह के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम के इल्म की नफी करवाई जा रही है कि भाई आखिरत का जो इल्म है ना, ये अल्लाह के पास है, ये मेरे पास नहीं है कि आखिरत कब आएगी, ये मेरे पास नहीं है, ठीक है। अल्लाह के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम के इल्म की नफी हो रही है। इंसानों के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम का इल्म जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, तमाम इंसानों को मिला करके नबी अलैहिस्सलाम का इल्म जो है वो उससे भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंसानों से कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ अल्लाह ताला से कंपेयर करके बात हो रही है कि मैं नहीं जानता कि, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बताया ही नहीं है कि कयामत कब आएगी, ठीक है। आलिमुल गैबी, आलिमुल गैब का मतलब होता है गैब का इल्म रखने वाला, ठीक है, और ये कौन होता है, ये अल्लाह ताला होता है गैब का इल्म रखने वाला, ठीक है। अब इसकी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह, तो वहीं पढ़ लेंगे। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, बस वो नहीं जाहिर करता उसके गैब पर, यानी अपने गैब पर, अल्लाह ताला का जो गैब है ना, अल्लाह ताला नहीं जाहिर करता अपने गैब पर अहदन, किसी को भी, ठीक है, यानी अल्लाह ताला किसी को भी अपने गैब का इल्म नहीं देता, अपने गैब का इल्म किसी के ऊपर भी नहीं खोलता, ये मतलब है इस आयत का, ठीक है जी। اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم کسی کے اوپر بھی نہیں کھولتا. اوکے اللہ سوائے من ارتضا من رسول, جس کو کہ پسند کر لیا ہو اللہ نے اپنے رسولوں میں سے. ٹھیک ہے, سوائے جس کو پسند کر لیا ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے طور پر, یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ, پس بے شک وہ يَسْلُكُ چلاتا ہے. سلکہ يَسْلُكُ کا مطلب ہوتا ہے چلنا. ٹھیک ہے, بلکہ سلکہ يَسْلُكُ کا مطلب چلنا. ٹھیک ہے, پس بے شک وہ چلتا ہے مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَسَدًا, اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی ایک چوکی دار. ٹھیک ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی کچھ خبریں اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کیسے بھیجتے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کون فرشتہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی خبریں پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ I'm sure سب کو پتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, لیکن جبرائیل علیہ السلام جب غیب کی خبر لے کر کے نبیوں کے پاس آتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ گارڈین اینجلز بھیجتے ہیں, پہرے دار, چوکی دار بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ بہت امپورٹنٹ میسج لینے والا جو پوسٹ مین ہوتا ہے نا, تو اس پوسٹ مین کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا سب سے امپورٹنٹ میسج یہ غیب کی خبریں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج رہے ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے, تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کی ایک ٹیم بھی بھیجی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے نہیں بھیجی ہوتی کہ جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی کمزور ہیں کہ کوئی آ کر کے ان کو ان سے چھین کر کے لے جائے گا غیب کی خبر. ٹھیک ہے, جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے, بہت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے, سب سے اونچا مقام فرشتوں میں انہی کا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیوں بھیج رہے ہوتے ہیں بھائی؟ ایک شان ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, جتنے جو ہے وہ بڑی شان والی چیز ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے اس کا ایک انٹوراج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, بھائی بادشاہ سلامت آتے ہیں تو اکیلے آ جاتے ہیں ایسے ہی. ٹھیک ہے, بھائی بادشاہ سلامت کی اپنی شان کے مطابق ان کے آگے پیچھے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, حالانکہ اگر دو باڈی گارڈز بھی ہونا بادشاہ سلامت کے ساتھ تو کافی ہے. ٹھیک ہے, کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی کہ بادشاہ سلامت کے اوپر اٹیک کرے. اگر اٹیک کرنے کی کسی نے کوشش کری بھی نا, تو اس کو اگر یعنی اس کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر اس کی شامت آ جائے گی. تو چند باڈی گارڈز بھی کافی ہوتے ہیں, لیکن اتنا سارا موٹر کیڈ کیوں ساتھ چل رہا ہوتا ہے؟ وہ موٹر کیڈ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی اس نے کچھ کرنا نہیں ہوتا, کوئی حفاظت کو تھوڑی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس کے ساتھ جتنی زیادہ گاڑیاں ہوں گی نا, اتنا زیادہ اس کی شان جو ہے نا وہ کھل کر کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا, اس پیغام کی شان یعنی ظاہر کرنے کے لیے سارے کے سارے نظام کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم انسانوں کا ہی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا, باقی سب کو تو نظر آتے ہیں نا, جانوروں کو نظر آتے ہیں فرشتے, جنوں کو نظر آتے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے, تو ان کے سامنے یہ ساری کی ساری شان نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ سب سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, گارڈز والا سلسلہ. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ غیب کی خبر نبیوں کے پاس آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان اس فرشتے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی چوکیدار بھی ساتھ بھیجتے ہیں. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ مطلب اس کا تو ترجمہ تو اس کا یہی ہے, تاکہ اللہ تعالی جان لے. یعلمہ میں پروناؤن کس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف. تاکہ, اچھا لی جو ہے نا, لی کا ترجمہ تو ہوتا ہے تاکہ, سو دیٹ. یعلمہ اللہ نوز, اور اللہ can find out, یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ لگ جائے, ان قد ابلغوا رسالات ربہم, کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. کیا مطلب؟ कि बजाहिर ऐसा लगता है कि जैसे फरिश्ता जा करके ना, वो हर फरिश्ता जो है वो अल्लाह ताला को जाके इन्फॉर्म करेगा कि पैगाम पहुंच गया। ठीक है, एक फरिश्ता होता तो उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस वजह से एक्चुअली ये कितने फरिश्ते होते हैं, पांच फरिश्ते होते हैं। एक तो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो के पैगाम को लेके जा रहे होते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चार फरिश्ते और होते हैं जो के गार्ड का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हर फरिश्ता अपने रब को जाकर के बताएगा, यानी अल्लाह ताला को जाकर बताएगा कि पैगाम पहुंच गया। ठीक है, और सब जो है ना बिल्कुल एक ही खबर देंगे, तो अल्लाह ताला को पता लग जाएगा कि भाई हाँ वाकई खबर पहुंच गई है। सही है कि हाँ वाकई खबर पहुंच गई है। इस आयत का तर्जुमा किया जाए तो यही बनता है, लेकिन क्या ये सही है? आप अगर बता दें क्या ये बात सही है, क्या ये तर्जुमा, तर्जुमा तो बिल्कुल यही बनता है इसका, ताकि अल्लाह ताला को पता चल जाए कि वाकई पैगाम उनके रब का पहुंच गया है, लेकिन क्या ये बात ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है? जी, क्लास में माशाल्लाह कितने लोग हैं? 14 लोग तो हैं, किसी एक को तो जवाब पता होगा इस बात का कि ये बात ठीक है कि ये बात ठीक नहीं है। अल्लाह ताला को तो सब मालूम है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला से कोई चीज पोशीदा कोई थोड़ी है कि पैगाम पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, अल्लाह ताला को तो पहले ही सब कुछ मालूम है। ठीक है, तो फिर फरिश्तों के ऊपर अल्लाह ताला डिपेंड तो नहीं करते कि वो आके बताएंगे तो अल्लाह को मालूम होगा, लेकिन कुरान की इस आयत का तर्जुमा तो यही बनता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर आप कुरान को तर्जुमे की बुनियाद पर समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप नहीं समझ सकते। क्या मतलब निकला इसका? कि अगर आप कुरान को तर्जुमे की बुनियाद पर समझने की कोशिश करेंगी तो आप सही नहीं समझ सकती, आप गलत समझ जाएंगी, गलत समझ जाएंगी। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये सबक है जो कि हमें इससे मिलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने इंशाल्लाह ऐसी कोशिश तो कभी करनी नहीं है, उम्मीद तो यही है कि आप ऐसी कभी कोशिश नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहे हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस बात को प्रमोट करते हैं कि कुरान को अरबी जुबान की इल्म की बुनियाद पर समझा जा सकता है, अरबी जुबान के इल्म की बुनियाद पर कुरान को समझा जा सकता है, हदीस की जरूरत नहीं है। कुरान को समझने के लिए हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान को समझने के लिए सहाबे कराम की बातों की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले भी लोग ऐसे रहे हैं दुनिया में, और आज भी ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं, बल्कि आज के दौर में तो ऐसे लोग जो हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में मशहूर भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी इस बात में मैं कभी नहीं आइएगा कि अरबी जुबान अगर आपको आती हो तो आप कुरान को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अरबी जुबान आती होगी तभी तो आप इसका तर्जुमा कर सकेंगे ना अपनी जुबान में। ठीक है, लेकिन जब तर्जुमा करेंगे तो फिर इसका क्या मफहूम निकलता है? अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला उन फरिश्तों का इंतजार करते हैं कि जी फरिश्ते आके बताएंगे अल्लाह ताला को। ठीक है, कि भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फरमाया वह अहाता बिमा लदैहिम, और काबू में रखा है जो कुछ उनके पास है, यानी अल्लाह ताला के इहाते में है, अल्लाह ताला के कंट्रोल में है जो कुछ भी इनके पास है। ठीक है, यानी मखलूक के पास या फरिश्तों के पास जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। वह अहसा कुल्ल शैइन अददा, और अल्लाह ताला ने शुमार कर रखा है हर चीज का शुमार, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है ना सबका शुमार, यानी सबकी तफसीलात अल्लाह ताला के पास मौजूद हैं। ठीक है, तो बजाहिर तो इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं नहीं मिलता, आयत के पहले वाले हिस्से का और आयत के दूसरे वाले हिस्से का, लेकिन जब हम तफसीरी रिवायात को ज्वाइन करते हैं ना, तो पहले वाला हिस्सा ये कह रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो इंतजार करते हैं फरिश्तों के आके बताने का। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो अगरचे कि एक एक अलग से बात करता हुआ लग रहा है, यानी अल्लाह ताला के अलग से इल्म के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब इन दोनों की तद्वीक की जाएगी तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला उन फरिश्तों के इत्तला का इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि अल्लाह ताला को तो सब कुछ पहले से ही पता है। ठीक है, बहरहाल तो इस तरह के बहुत सारे और मुकामात भी कुरान के अंदर आते हैं कि जिसके अंदर अगर तर्जुमे से उसको समझा जाएगा तो मानी जो है वो कुछ का कुछ बन जाएगा। तो इस वजह से हमें तफसीर की जरूरत पड़ती है, और तफसीर हमें कैसे मिलती है, हमें तफसीर जो है वो हदीस से मिलती है और सहाबा कराम के अकवाल से मिलती है, और जो उलमाए उम्मत होते हैं सहाबा कराम के बाद भी जो है उन्होंने भी कुरान की आयात को बाद में भी खोल खोल करके समझाया है कि इसका क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था। ठीक है, तो इस वजह से कुरान अगर किसी को पढ़ना है तो वो तफसीर के साथ पढ़े। ठीक है, यानी कुरान का इल्म हासिल करने के लिए किसी को पढ़ना है ना, सवाब की नीयत के लिए नहीं। सवाब जो है वो तो आपको तिलावत करने से भी मिल जाता है, और वो करनी चाहिए, डेफिनेटली हम उस सवाब के मोहताज हैं, हमें तिलावत कुरान की करनी है। लेकिन अगर आप कुरान का इल्म हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि तफसीर उठा करके उसको देखा जाए। ठीक है, और तफसीर भी जो है ना वो भी जाहिर है कि यानी उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे कम इल्म की वजह से हमें भी तफसीर पढ़ करके भी समझ में नहीं आ रही होती। इस वजह से इवन तफसीर को भी पढ़ने का प्रॉपर तरीका ये है कि किसी आलिम की रहनुमाई में ही तफसीर को पढ़ा जाए। बहरहाल तो इन आयात की जो खुलासे तफसीर के अंदर बात लिखी हुई है वो पेज नंबर 573 के ऊपर भी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि फरमाते हैं पेज नंबर 573 के ऊपर के बिल्कुल मिडल ऑफ द पेज से, या जिस पढ़ रहे हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का कहना नहीं मानते तो यकीनन उन लोगों के लिए आतिश दोजख है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, मगर कुफार उस वक्त इन मजामीन से मुतासर नहीं होते बल्कि उल्टा मुसलमानों को जलील और हकीर समझते हैं और कहते हैं अय्युल फरीकैन खैरु मकामो व अहसनु नदिया, कि भाई हम दोनों जो फरीक है ना, मुसलमान और हम लोग जो कि मुसलमान नहीं हुए, तो हम दोनों में कौन सा फरीक जो है वो अपने मुकाम के एतबार से ज्यादा बेहतर है, और अहसनु नदिया अपने जो हमारी जो कॉल है, हमारा जो जो पैगाम है उसमें किसका पैगाम ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें काफिर किया करते थे और ये इस जहालत से बाज नहीं आएंगे। यहाँ तक कि यानी ये जो काफिर है ना, ये इस तरह की जाहिलाना बातें हमेशा करते ही रहेंगे अनलेस के ये तौबा करके मुसलमान हो जाए, तो फिर तो ये अपनी जाहिलाना बातें तर्क कर देंगे। लेकिन अगर ये तौबा करके मुसलमान नहीं होंगे ना, तो ये इस तरह की बातें करते ही रहेंगे। ठीक है, कि भाई हम ज्यादा अच्छे हैं, हमारे पास ज्यादा लोग हैं, हमारे पास ज्यादा अकल है, ये है वो है, इस तरह की बातें करते रहेंगे। यहाँ तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, उस वक्त जानेंगे कि किसके मददगार कमजोर हैं और किसकी जमात कम है। यानी काफिर ही ऐसे होंगे कि जिनके कोई काम नहीं आएगा, मतलब कयामत के दिन इनके कोई काम नहीं आएगा। बस मुराद जमात से जमाते मुतिया है, यानी जो इनके अतात करने वाले लोग हैं वो मुराद है। ये एक मुश्किल वर्ड है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नासिरन में नाफे आला की नफी हो गई और अददन में नाफे अदना की नफी हो गई। ये भी एक मुश्किल टर्म है, इसको भी ये भी स्किप कर सकते हैं। आगे कयामत के मुतालिक कलाम है कि ये लोग कयामत का वक्त बतौर इनकार के दरियाफ्त करते हैं, यानी इस तरह दरियाफ्त करते हैं कयामत कब आएगी। इनका मकसद ये नहीं होता कि क्यूरियसली जो है वो पूछ रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम से, जिसको कहते हैं ना तालिब इल्म के तौर पर पूछ रहे हैं, नहीं, बल्कि ये एतराज के तौर पर पूछ रहे होते थे, क्योंकि इनके नजदीक कयामत ने आने ही नहीं था। ठीक है, तो बस ये ना हंसी मजाक करने के लिए और तंज करने के लिए पूछते थे, हाँ भाई और सुनाओ भाई कब आएगी। जैसे हमारे यहाँ मजाक करने का ये अंदाज होता है ना, कि जब किसी की बात जो है उसको बहुत ही यानी बेकार का समझ रहे होते हैं तो इस तरह से हम कहते हैं ना, और सुनाओ भाई ये जो जिसका तुम बात कर रहे थे ना, तो वो कहाँ है, फिर किधर है वो तुम्हारे मददगार, किधर है तुम्हारी वो कयामत, इस तरह से बात किया करते थे ये लोग। तो बतौर इनकार के दरियाफ्त करते हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है आया वो नजदीक आने वाली है या मेरे परवरदिगार ने उसके लिए कोई मुद्दत दराज मुकर्रर कर रखी है, लेकिन हर हाल में वो आएगी जरूर, वो आवेगी जरूर, रहा इल्म तायीन सो वो महज गैब है। यानी किस वक्त आएगी इसका तायुन करना ना ये मेरा काम नहीं है, वो तो गैब का इल्म है, और गैब का जानने वाला वही है सो जिस गैब पर किसी को मुत्तला करना मसलहत नहीं होता, वो अपने ऐसे गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। ठीक है, तो हजरत ने यहाँ पर तफसीर के साथ बात करी है कि भाई अल्लाह ताला गैब के ऊपर लोगों को मुत्तला करता है, लेकिन सिर्फ उन गैब की बातों पर मुत्तला करता है, यानी इन्फॉर्म करता है कि जिसके किसी को फायदा होता हो, ठीक है, यानी मसलहत हो जिसके अंदर इतला देने की ना, बस वही वाली बातें बताता है और उसके अलावा बातें नहीं बताता। और इल्मे तायीन कयामत यानी कयामत के तायीन का इल्म ऐसा ही है कि इस पर किसी को मुत्तला करने में कोई मसलहत नहीं है, किसी को कोई जरूरत नहीं है कि कब कयामत आएगी, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उलूमे मुतअल्लका बिन्नुबुवा से नहीं जिनके हुसूल को कुर्ब इलाही में दखल होता है, बस ऐसे गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। ठीक है, कब कयामत आएगी ये अगर किसी को पता चल भी जाए ना तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, ये अल्लाह ताला का फैसला है, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो जिसको जिस चीज से कोई फायदा नहीं होता ना अल्लाह ताला उस चीज को नहीं बताते हैं। ठीक है, और फायदे से यहाँ पे क्या मुराद है कि आपको जब ये पता लग जाएगा कि कयामत कब आएगी तो आप जो है ना वो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो जाएंगे, ज्यादा नेक अमाल करने शुरू हो जाएंगे, नहीं ऐसा होना ही नहीं वाला है। ठीक है, इस वजह से अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया। हाँ, मगर अपने किसी बरगुजीदा पैगंबर को अगर किसी ऐसे इल्म पर मुतला करना चाहता है जो कि इल्म नबुवत से हो, ख्वाह मुस्बते नबुवत हो जैसे पेशेन गुइया, ख्वाह फरोगे नबुवत से हो जैसे इल्म अहकाम, इसका क्या मतलब है भाई? ये जरा एक टर्म्स है तो बड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन शायद इतनी क्लियर ना हो, तो क्या मतलब है? कहते हैं कि मगर अपने किसी बरगुजीदा पैगंबर को, जैसे फरमाया ना इल्ला मनिर तवा मिर रसूलिन, के जिसको अपने रसूल के तौर पर अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया ना उसको ये इल्मे गैब देते हैं, लेकिन कौन सा वाला इल्मे गैब देते हैं? इल्मे नबूवत। ठीक है, इल्मे नबूवत, नबूवत वाला इल्म, नबूवत वाला इल्म जो है वो दो किस्म का होता है। ठीक है, यानी उसके दो हिस्से होते हैं, वो दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक हिस्सा क्या कहलाता है? मुस्बिते नबूवत। ठीक है, मुस्बित या मुसब्बिते नबूवत भी हो सकता है, मुसब्बितु नबूवत या मुस्बिते नबूवत भी कह सकते हैं इसको उर्दू में अगर बोलें तो, मुस्बिते नबूवत इसका मतलब होता है नबूवत को साबित करने वाली चीजें। मुस्बिते नबूवत वो वाला इल्म जो नबूवत को साबित करता है, ठीक है, यानी नबूवत की एविडेंस, ये एक हिस्सा होता है इल्म नबूवत का। और इल्म नबूवत का दूसरा हिस्सा क्या होता है? इल्म एक्चुअली यानी फरोग नबूवत। ठीक है, फरोग नबूवत का इल्म क्या मतलब कि नबूवत को चलाने के लिए या नबूवत का जो मकसद है, ठीक है, नबूवत का जो मकसद है उसका इल्म, ये हो गया फरोग नबूवत। ओके, तो इल्म नबूवत के दो हिस्से हो गए, एक हो गया मुस्बते नबूवत और दूसरा हो गया फरोग नबूवत का इल्म। ठीक है, मुस्बते नबूवत कौन सी चीजें होती हैं? ये वो पेशेन गोइयां होती हैं फ्यूचर के बारे में, जिसको के यानी जैसे कयामत की निशानियां या यानी मुस्तकबिल के हालात क्या क्या पेश आएंगे। ठीक है, ये मुस्बते नबूवत होती है, मुस्तकबिल के क्या क्या हालात पेश आएंगे। ओके, इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी बातें बताई, ये भी बताया कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम के जो नवासे हैं उनको शहीद कर दिया जाएगा, इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनको शहीद कर दिया जाएगा, ये बात नबी अलैहिस्सलाम बता चुके थे। ठीक है, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उनको शहीद कर दिया जाएगा, अली रजी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया जाएगा, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया जाएगा, ये सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई थी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई। ये जो टर्क्स होते हैं ना, तुर्क लोग, ये लोग दुनिया में यानी हुकूमत करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, क्योंकि जिस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस जमाने में तुर्क लोग जो थे ना, इनकी कोई हैसियत ही नहीं होती थी। बहुत ही ज्यादा ये बेकार और मतरूक, इनको तुर्क कहते क्यों है, क्योंकि ये मतरूक थे। मतरूक मीनिंग दोज पीपल हु वर लेफ्ट, लेफ्ट अलोन, यानी किसी काम के लोग नहीं थे ये, बिल्कुल ही मतलूक किस्म के लोग थे। जैसे आपके इस घर के अंदर कोई चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो जाती है ना, तो आप उसको फिर उठा करके ना गैराज में रख देती हैं, या जो है वो क्या कहते हैं, जो आपके स्टोरेज होता है, स्टोरेज में डाल देती हैं, तो उस चीज को कहते हैं भाई ये चीज तो मतरूक हो गई है अब। ठीक है, बिकॉज अब ये किसी काम की नहीं रही है। तो तुर्क लोगों को तुर्क अरबी में कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुर्क जो है ना, वो एक्चुअली मतरूक है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये तुर्क जो है ना, ये एक जमाने में ये हाकिम बन जाएंगे, ये अरबों के ऊपर हुकूमत करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से कयामत के करीब जो है, वो लोग जिनके पाओ के अंदर चप्पलें भी नहीं होंगी, जूतियां भी नहीं होंगी, इंतहाई जो है वो यानी गरीब लोग, वो इतने शाहाना इमारतें बनाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाए करेंगे। ठीक है, तो ये हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, और पता नहीं और कितनी सारी नबी अलैहि सलाम ने पेशन गोइयां फरमाई। तो ये सारी बातें जो हैं, ये मुस्बत नबूवत है, नबी नबूवत को साबित करने वाली बात है ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, वैसे वैसे लोग देखते जाएंगे इन बातों को होते हुए। और माजी की बातें, वो भी मुस्बत नबूवत है, कि माजी में जो चीजें हो गई जिनकी तफसीरात किसी को भी नहीं पता थी, ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने वो बातें बताई। मिसाल के तौर पर माजी की कुछ बात किसी को याद है, कि जिसके बारे में सवाल हुआ था और नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने बिल्कुल ठीक ठीक खबर दे दी थी, तो वो भी नबुवत को साबित करने वाला वाली एक बात थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दिया था। किसी को याद है? फ्यूचर का तो मैंने आपको कुछ मिसालें दे दी ना, माजी की कोई मिसाल? जी माशाल्लाह, सूरह कहफ। ठीक है, सूरह कहफ किस पर नाजिल हुई थी? कि यहूदियों ने कुफार मक्का से कहा था कि जाकर के इनसे पूछें कि अस्हाब कहफ कौन थे और ज़ुल्करनैन कौन था। ठीक है, तो अगर ये सही जवाब दे दें तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह के नबी हैं, और अगर नहीं जवाब दे सके ना, तो इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई नबी नहीं है, बल्कि तुम लोगों को इनको कत्ल ही कर देना फिर, क्योंकि नबूवत का झूठा दावा कर रहे हैं, तुम इनको कत्ल कर देना। ये यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का को कहा था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि फिर वो एक कहानी, वो जो यानी तफसील तो है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह कहना भूल गए थे, तो 15 दिन तक जो है वो अल्लाह ताला ने खबर नहीं दी थी, लेकिन 15 दिन के बाद पूरी खबर आ गई, सूरह कहफ पूरी की पूरी नाजिल हो गई। ठीक है, और इसमें इन दोनों बातों के बारे में बता दिया गया, तो आप नबूवत साबित हो गई। ठीक है, अच्छा, फरोग नबूवत वाला जो इल्म होता है, ये वो अहकाम होते हैं, इल्म अहकाम, कि भाई क्या करना है। ठीक है, नमाज पढ़नी है, जकात देनी है, रोजा रखना है, और क्या क्या नहीं करना है, ये सारे जो होते हैं ना, अहकाम होते हैं। ठीक है, तो ये जो इल्म है, ये अल्लाह ताला अपने बरगुजीदा चोजन प्रॉफिट्स को देते हैं। ठीक है, गैब में से निकाल निकाल करके। ठीक है, तो ये पूरा गैब नहीं होता, बल्कि गैब के कुछ हिस्से होते हैं। तो आगे फरमाते हैं कि इस तरह इत्तला देता है कि उस पैगंबर के आगे और पीछे, यानी जमी जिहात में। ठीक है, जमी जिहात का मतलब चारों जिहतों में, जिहत मीनिंग डायरेक्शंस, तो आगे भी पीछे भी, राइट साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर भी, वही के वक्त मुहाफिज फरिश्ते भेज देता है, ताकि वहां शयातीन का गुजरना हो, जो कि वही को फरिश्ते से सुनकर और कहीं और किसी से जा कहें, या किसी वसवसे वगैरह का इल्का कर सकें। ठीक है, तो इसकी क्या यानी तौजीह क्या लिखी, कि ये लोग जो है वो फरिश्ते से चोरी तो नहीं कर सकते, लेकिन होता है ना कान लगा करके सुन ले, फरिश्ते को जो है वो पता ना लगे, क्योंकि फरिश्ता जो है उसको भी इल्मे गैब नहीं होता कि कौन आकर के सुन रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने चार फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के चारों डायरेक्शंस के अंदर साथ भेजे होते हैं, जो कि चारों तरफ देखते रहते हैं कि कोई शैतान जो है वो आकर के कान लगा करके ना सुन रहा हो इस वही की बात को। ठीक है, क्योंकि शैतीन जो है उनको अल्लाह ताला ने इतनी पावर तो दी है ना, नंबर वन फरिश्तों को देख सकते हैं, नंबर टू फरिश्तों की आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब इन पावर्स को अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो उन उसको रोकने के लिए जो है अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, ये भाई सारा का सारा ये निजाम है अल्लाह ताला का, फरिश्तों के जरिए से ये काम करवाते हैं और शयातीन जो है वो अपने काम करते रहते हैं। ठीक है, तो हालांकि अल्लाह ताला को जरूरत ना तो फरिश्तों की थी अपने नबी के दिल में कोई बात डालने के लिए, ना फरिश्तों की जरूरत थी, और ना जो है वो शयातीन जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई काम कर सकते हैं, ना जो है वो शयातीन से बचाने के लिए अल्लाह ताला को चार फरिश्ते भेजने की जरूरत है, ये कुछ भी जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को। ठीक है, बल्कि अल्लाह ताला ने बस एक सिस्टम बनाया हुआ है, इस तरीके से अल्लाह ताला काम करवाते हैं, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, मंशा है। ठीक है, और हम इसके आगे सर तस्लीम खम करते हैं कि भाई जैसा अल्लाह ताला चाहे वैसा अल्लाह ताला करते हैं, यही ईमान है। ठीक है, जैसे कि बदर के जब मार्का हुआ था तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उसके अंदर कि अल्लाह ताला ने वहां पर 1,000 फरिश्ते भेजे थे मुसलमानों की मदद के लिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ये भी तो फरमाते हैं ना कि इन 1,000 फरिश्तों की कोई जरूरत कोई थोड़ी थी। ठीक है, एक फरिश्ता भी काफी था तुम्हारी मदद करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने तो बस तुम्हारे दिल को मजबूत करने के लिए जो है वो 1,000 फरिश्ते भेज दिए थे बस। ठीक है, बस ये अल्लाह ताला का सिस्टम है कि कभी चार फरिश्ते भेजता है हिफाजत के लिए, कभी 1,000 फरिश्ते भेज देता है मोमिनीन की मदद के लिए। बहरहाल तो फरमाते हैं कि ना किसी वसवसे वगैरह का इल्का कर सकें कि शैतान जो है वो नबी के करीब आकर के, या ऐसा भी ना कर सकें कि फरिश्ता भी कोई बात डाल रहा है नबी के दिल में और साथ साथ शैतान भी जो है वो नबी के दिल में कोई बात डालना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये चार फरिश्ते जो है ना वो इस बात से भी उसको महफूज रखते हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे पहरादार फरिश्ते चार थे, कमाफी रूहुल मानी, और ये इंतजाम इसलिए किया जाता है ताकि जाहिरी तौर पर अल्लाह ताला को मालूम हो जाए कि इन फरिश्तों ने अपने परवरदिगार के पैगाम रसूल तक बहिफाजत पहुंचा दिए हैं और इसमें किसी का दखल व तसरुफ नहीं हुआ है, और पहुंचाने वाला तो सिर्फ वही का फरिश्ता है, लेकिन मईयत की वजह से रसद यानी मुहाफिज फरिश्तों की तरफ भी इसनाद फेल की कर दी। ठीक है ना, यानी असल में जो पैगाम पहुंचाने वाला होता है वो तो पोस्टमैन ही होता है ना। ठीक है, बाकी जो गार्ड्स होते हैं वो पैगाम तो नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन कहने के लिए यानी मईयत की वजह से कि भाई पोस्टमैन के साथ जो है वो बॉडीगार्ड्स भी तो होते हैं ना, तो कह दिया भाई ये सारे के सारे पैगाम को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि पैगाम को असल में सिर्फ पोस्टमैन लेकर के जा रहा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी मईयत की वजह से इन सारे फरिश्तों की तरफ इस फेल का की इसनाद करती, यानी इस फेल की रिलेशनशिप जो है ना, पहुंचाने वाले फेल की रिलेशनशिप पांचों फरिश्तों की तरफ कर दी कि ये पांचों जो हैं वो हमारा पैगाम पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस ये एक अंदाज है बात करने का अरबी जुबान के अंदर जो कि अल्लाह ताला इख्तियार फरमाते हैं, काम एक ही कर रहा होता है लेकिन जितने उस काम के अंदर शामिल होते हैं ना उन सब की तरफ जो है वो इसकी निस्बत कर दी जाती है इस काम की। ठीक है, जैसे कि कौम के अंदर भी जो है वो चंद लोग होते हैं जो कि नबी की मुखालफत बढ़ चढ़ करके करते हैं, लेकिन जितने लोग उनके साथ शामिल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, यानी तालियां बजाने वाले और शोर व गुग्गा करने वाले और हाँ में हाँ मिलाने वाले, उन सब के ऊपर अजाब आता है। ठीक है ना, सिर्फ जो चार पांच लोग जो हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम नबी को मारा होता है या नबी की का मजाक उड़ाया होता है, ठीक है, तो मजाक जो है वो तो चंद लोगों ने उड़ाया होता है, लेकिन अल्लाह ताला जब बात करते हैं उनकी तो पूरी कौम को शामिल कर देते हैं, जिन्होंने भी उनके सपोर्ट किया था सबको शामिल कर देते हैं ना। बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे कामों के अंदर भी अल्लाह ताला सबको शामिल कर देते हैं जो जो उस काम के अंदर शरीक होते हैं, जैसे यहाँ पर पांचों फरिश्ते यानी चारों फरिश्तों की भी इसनाद कर दी इसकी तरफ। अल्लाह ताला इन पहरेदारों के तमाम अहवाल का इहाता किए हुए है। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे लिखा था रूह के बारे में, तो वो रूह जो है चूंकि माजी की खबर नहीं थी इस वजह से मैंने रूह का जिक्र नहीं किया इधर। ठीक है, बल्कि माजी की खबर जो थी वो असहाबे कहफ वाली थी, और ज़ुल्क़रनैन वाली थी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने रूह का जिक्र नहीं किया था, अगरचे के पूछने वालों ने तो तीन सवाल पूछे थे ना, और तीसरा सवाल रूह का था मेरा। अच्छा, तो फरमाते हैं कि इसलिए पहरेदार ऐसे अच्छा, और अल्लाह ताला पहरेदारों के तमाम अहवाल का इहाता किए हुए है, इसलिए पहरेदार ऐसे मुकर्रर किए गए हैं जो इस काम के पूरे पूरे अहल हैं, और उसको हर चीज की गिनती मालूम है, बस वही के सब अज्जा एक एक करके उसको मालूम है, और वो सब की पूरी हिफाजत करता है। हासिल मुकाम ये कि तयीन कयामत का इल्म उलूम नबूवत से नहीं, यानी कयामत का वक्त स्पेसिफाई करना, इसका इल्म जो है ना वो उलूम नबूवत में शामिल है ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसका इल्म ना होना नबूवत के मनाफी नहीं है। अलबत्ता उलूम नबूवत अता किए जाते हैं और इनमें एहतमाल खता का नहीं होता, तो ऐसे उलूम से तुम मुस्तफीद हो और जवायद की तहकीक छोड़ दो, ठीक है। यानी यू जस्ट वरी अबाउट जो यानी मुस्बिते नबूवत और फरोगे नबूवत, तुम इन बातों की फिक्र करो, ठीक है। और जो कयामत की तहकीक है ना, कयामत की जो तायीन है, इसकी तुम तहकीक ना करो, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अपने काम से काम रखो, ये बेसिकली इसका मैसेज है, ठीक है। चलिए, कोई सवाल है किसी को इन जनरल या इस टॉपिक के बारे में, तो आप पूछ लें, वरना टाइम हमारी क्लास का खत्म हो चुका है। तो बाकी जो रह गया है इस सूरत में, वो मारिफ और मसाइल का आखिरी हिस्सा है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कोई अगर वैसे ही फीडबैक भी हो किसी के पास कि भाई आप क्लास में इस अंदाज की बजाय अगर किसी और अंदाज से बात किया करें, या कोई और चीज के ऊपर ज्यादा आप एम्फेसिस या वक्त लगाया करें, तो इस किस्म का फीडबैक भी जो है वो भी वेलकम होता है। आप वो फीडबैक जो है व्हाट्सएप के ऊपर हमें बाद में भी दे सकती हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि क्लास को किसी तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो अगर किसी क्लास के किसी एस्पेक्ट से आपको कोई फायदा हो रहा है, तो अगर आप चाहें कि उसी एस्पेक्ट को, उसी वाले हिस्से को जो है वो जरा ज्यादा उसके ऊपर बात कर दी जाए, तो उसको भी जो है वो आप बता सकती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ज्यादा फिर वक्त लगाया जा सकता है, इसी को फीडबैक कहते हैं ना। तो अगर आवाज थोड़ी सी और लाउड हो तो अच्छा होगा। अच्छा, ये तो टेक्निकल फीडबैक है, विच इज ऑल्सो गुड। लेकिन इसमें ना दो चीजें हैं, एक तो ये कि या तो वाकई मेरी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आपको आवाज ज्यादा लाउड नहीं आ रही है, या ये कि सिर्फ आपको आवाज कम आ रही है और बाकियों को सही आ रही है, बट हल्की है। बाकी लोग भी इसे एग्री करते हैं कि आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस हो रहा है? अगर सबको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक को हो रही है, दूसरे को नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपका अपना, या तो आपका अपना स्पीकर जो है ना, या तो वो लो हुआ हुआ है, या हो सकता है कि कोई कोई उसके अंदर प्रॉब्लम हुई हुई है आपके लैपटॉप के या आपके फोन के स्पीकर में। ऐसा हो जाता है कभी कभी, स्पीकर जो होते हैं ना वो काम करना सही नहीं का काम कर रहा होता, तो आप फुल वॉल्यूम पे भी लगाने के बावजूद आपको पूरी आवाज नहीं आ रही होती है। जैसे कि दो तीन लोगों ने लिखा है कि नहीं, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे फिर ये बात प्रूव होती है कि आपका अपना जो लैपटॉप है या फोन है ना, उसकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है। तो या तो आप उसको लाउड करके देखें, या उस स्पीकर में कोई खराबी हो गई है, तो फिर उसको ठीक करवा करके देखें, ठीक है। अच्छा, और किसी ने कुछ लिखा था? अच्छा, जो आपने प्राइवेटली अस्सलाम वालेकुम लिखा है, तो उसका कोई मकसद है, कोई सवाल पूछना चाह रही हैं, या बस ऐसे ही वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सुनने के लिए? अच्छा, अभी तो खैर क्लास फिर मैं बंद कर रहा हूँ, तो अगर और कोई फीडबैक हो तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।